हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका के पैर की चोट पूरी तरह ठीक हो गई थी, परंतु ऑफिस में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। करण ने काव्या से बात करने के बहाने घर पर फोन किया था। उस दौरान हर्षिता से भी बात हुई, जिससे उसे पता चला कि ऋषभ की तबीयत और शिविका के पैर की चोट सब ठीक है। ये जानकर करण समझ नहीं पाया कि यदि सब कुछ ठीक है तो शिविका ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। उसने शिविका को फोन नहीं किया और न ही शिविका ने उसे। 3 दिन बाद, इस बीच शिविका ने अपने पिता से बात नहीं की थी। वे करण के बारे में पूछ रहे थे और शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन की प्रतिक्रिया के बाद वो उन्हें करण के बारे में क्या बताए। उसे खुद ही इस बारे में कुछ पता नहीं था और शायद वो पता करना भी नहीं चाहती थी। इन दिनों में पहले शिविका की चोट के कारण ऋषभ कभी कभी ऑफिस जाता था, परंतु जब उसने देखा कि शिविका ठीक हो जाने के बाद भी ऑफिस आने से परहेज कर रही है, तब ऋषभ ने भी ऑफिस जाना बंद कर दिया। उसे ऑफिस जाना या काम करना वैसे भी पसंद नहीं था, वो केवल शिविका के लिए जाता था। शिविका घर से सारा काम देख रही थी, परंतु ये पर्याप्त नहीं था। इस बीच ऑफिस में बाकी लोग ढीले पड़ गए थे और कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। जतिन और अंकिता इन सबके इंचार्ज थे और वे दोनों ही अपना काम ठीक से नहीं करते थे, तो बाकी लोग उनकी क्या सुनते। करण ये सब देख रहा था और उसे सब समझ आ रहा था, परंतु वो नया और जूनियर होने के कारण किसी से कुछ नहीं बोल पाया। वो शिविका को बताना चाहता था, परंतु पता नहीं क्यों वो उसे कॉल नहीं कर पाया। उसे ये डर भी था कि शिविका उसका कॉल रिसीव करेगी भी या नहीं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे। काव्या कई बार करण की बात करती और उसके बारे में शिविका से पूछती, परंतु शिविका उसकी बात टाल देती। काव्या उसे बताती जब जब उसकी करण से फोन पर बात होती थी। ये सुनकर शिविका को अच्छा भी लगता था। इस बीच उसके पिता ने उसे प्यार से समझाया और ऑफिस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके बीच चाहे जो भी निजी समस्या हो, इसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात शिविका को भी समझ आ गई, इसलिए अगले दिन वो सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसे काम पर जाते देख उसके पिता और ऋषभ ने राहत की सांस ली। अब वो पहले जैसी सामान्य लग रही थी। पिछले 10-12 दिनों में वो जैसे कोई और ही बन गई थी, जिसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं था। SK डिजाइनिंग हाउस। शिविका बिना किसी को बताए अचानक ऑफिस आई। उसे दिनेश अंकल से जो शिकायतें सुनने को मिल रही थीं, वो सब अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसके अलावा वो नहीं चाहती थी कि करण को उसके आने के बारे में पता चले। उसे करण से मिलने की सबसे ज्यादा चिंता थी, परंतु अब वो ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गई थी। पार्किंग एरिया के लिफ्ट से वो सीधे अपने ऑफिस के फ्लोर पर आई और ऑफिस की ओर बढ़ गई। सभी आराम से बैठे अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। जतिन ने एक दो बार उन्हें काम करने के लिए कहा और फिर अपने केबिन में जाकर किसी से बात करने लगा। करण किसी सोच में डूबा बैठा था। तभी निधि उसके पास आई और बोली, क्या हुआ करण, तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो, बॉस को मिस कर रहे हो क्या? करण ने बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं निधि, ऐसी कोई बात नहीं है, और भला बॉस को कोई मिस करता है क्या? वे दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से शिविका की आवाज़ आई, सॉरी तुम दोनों को परेशान करने के लिए, पर कोई मिस करे या नहीं, बॉस को तो अपने काम के लिए आना ही पड़ता है। आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ते हुए निधि ने धीमी आवाज में कहा, ओह शिट। निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो शिविका सामने खड़ी थी, दोनों हाथ आगे बंधे हुए। करण और निधि उसकी ओर देख रहे थे, शायद उसने उनकी बातें सुन ली थीं। निधि ने घबराहट छुपाते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग मैम, आप ठीक है ना? आपके पैर की इंजरी? शिविका ने करण पर एक नज़र डालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद अब कोई और ठीक ना रहे। निधि ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, वो हम दोनों तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं है ना करण? करण ने कुछ नहीं बोला और न ही शिविका को कोई सफाई देने की कोशिश की। वो एकदम खाली चेहरे से उसकी ओर देख रहा था। शिविका ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही है, क्योंकि यही हंसी मजाक करने के लिए तो मैं सैलरी देती हूँ तुम दोनों को। क्यों? निधि काफ़ी घबरा गई। उसे शिविका के ताने का मतलब समझ आ रहा था। उसने सिर झुकाकर जल्दी से कहा, नहीं मैम, मैं बस काम ही कर रही थी। शिविका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यहाँ पर अपनी डेस्क छोड़कर कौन सा काम कर रही थी? हाँ करण से हेल्प लेने आई होगी ना, क्योंकि वो तो तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है डिज़ाइनिंग में। ये सुनकर निधि कुछ नहीं बोली। उसने शिविका की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखों से हल्के से करण की ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। शिविका ने उसे नहीं रोका। वो समझ रही थी कि अगर उसने निधि को और रोका तो उसका सारा गुस्सा निधि पर ही निकल जाएगा। उसके जाने के बाद उसने करण पर एक नज़र डाली और बोली, मिस तो नहीं कर रहे थे तुम मुझे, पर फिर भी तुम्हारे सामने आ गई मैं। अब न चाहते हुए भी झेलना पड़ेगा मुझे। और सॉरी, तुम्हारे फ्लर्ट में डिस्टर्ब कर दिया मैंने तुम्हें, करण ने सपाट लहजे में कहा। मैं निधि के साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था शिविका, और ये बात तुम भी जानती हो, इसलिए कृपया इस तरह ताने मारकर बात करना बंद करो। और उन दोनों के बीच टेंशन देखकर आसपास के लोग हैरानी से देखने लगे। जैसे ही शिविका ने उनकी ओर देखा, वे वापस अपने काम में लग गए। शिविका समझ रही थी कि इस तरह सबके सामने बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसने खुद को कंट्रोल किया और करण की बात काटते हुए बोली, और क्या, और कुछ भी बचा है क्या सफाई देने को? वैसे मेरे पास भी इन सब बकवास बातों के लिए वक्त नहीं है, इसलिए आज का शेड्यूल लेकर मेरे केबिन में आओ। इतना बोलकर शिविका सीधे अपने केबिन की ओर चली गई। उसके जाने के बाद करण ने सोचते हुए गहरी सांस ली और अपनी टेबल पर रखे आईपैड को उठाया। वो भी शिविका के पीछे उसके केबिन की ओर बढ़ गया। शिविका को गुस्से में जाते देख निधि ने अपने डेस्क से सिर उठाते हुए कहा, करण तो गया आज। निधि की बात सुनकर पूजा ने कहा, पक्का तूने ही फंसाया होगा बेचारे करण को, नहीं तो वो बस अपने काम से काम रखता है। निधि ने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में पूछ लिया था, लेकिन उसका मूड भी शायद आज ठीक नहीं था और ठीक उसी वक्त मैम भी वहाँ आ गईं। पीछे से रचना बोली, भगवान की दया से तुम बच गईं, नहीं तो सारा गुस्सा करण के बजाय तुम पर ही निकलता। निधि राहत की सांस लेते हुए बोली, हाँ बच गई, मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी आज जाकर। अंकिता ने उन्हें डांटते हुए कहा, चलो अच्छा लड़कियों, बहुत हो गया, काम करो अब, बॉस इतने दिनों बाद आज ऑफिस में है और अगर इस तरह बातें करते हुए सुन लिया उसने तो फिर सबकी क्लास लगेगी। अंकिता उनकी टीम में सबसे सीनियर थी और डिजाइनर हेड भी, इसलिए सभी उसकी बात मानते थे। अंकिता की बात सुनकर सारी लड़कियां वापस अपने काम में लग गईं। शिविका के केबिन में केबिन के अंदर आकर भी शिविका अपनी कुर्सी पर नहीं बैठी थी। वो गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और करण अंदर आया। उसके अंदर आते ही शिविका गुस्से में उसकी ओर आई और उसके सामने खड़ी होकर बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे तुमने निधि से, बॉस को कौन मिस करता है? करण ने बिना उसकी ओर देखे लापरवाही से कहा, जब तुमने सुन लिया है तो फिर क्यों पूछ रही हो बार बार एक ही बात?
करण की बेरुखी देखकर शिविका इमोशनल होते हुए बोली, इस तरह से क्यों बोल रहे हो? लुक एट मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी करण, इट्स हर्टिंग। इतना बोलते हुए शिविका ने करण का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। करण ने तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया और पूछा, वाई, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम है मेरे तुम्हारे आसपास होने से और मैं वहां से चला जाऊं, और फिर अभी क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं निधि से ये कहता कि मैं मर रहा हूं जो मैंने इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा। बताओ, आज आखिर बता दो कि चाहती क्या हो तुम? शिविका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा, जो मैंने कहा था सिर्फ वही याद है और जो तुमने वो? करण ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या कहा मैंने ऐसा? बताओ जरा, याद दिलाओ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है और पता नहीं क्यों तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो उस किस के बाद से। उस किस का जिक्र आते ही वे दोनों शांत हो गए और अपनी जगह पर रुक गए। करण भी उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, परंतु सारी बातें उस दिन से ही जुड़ी हुई थीं, इसलिए ये बात आनी ही थी। शिविका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सॉरी क्यों बोला था उस दिन मुझे किस करने के बाद? और अगर इतना ही गलत लगा था तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? वैसे भी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन उसके बाद। शिविका अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही करण ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उस दिन की तरह कन्फ्यूजन से नहीं परंतु बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। इससे शिविका की आंखें बंद हो गईं और वो पूरी तरह इस भावना में खो गई। उसके हाथ करण के शर्ट के कॉलर पर कस गए। क्रमशः